दिन भर 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की बनेगी सरकार, हरियाणा में फंसा पेंच।
चाहे वो दुष्यंत चौटाला हैं, चाहे अभय जी हैं, चाहे इंडिपेंडेंट्स हैं, उन सभी को जो मत पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास का मत पड़ा है। समय है कि सब साथ आएं, मिलके गठबंधन की विपक्ष की एक स्थायी सरकार हरियाणा में देने का काम करें।
महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजे दिल्ली झारखंड के चुनाव पर क्या असर डालेंगे?
दिल्ली की लड़ाई जो है वो कांटे की टक्कर हो सकता है बीजेपी और आपके बीच में। झारखंड में इतना असर मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी विपक्ष की तरफ से अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है।
भारत पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर, सब विस्तार से। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कीर्ति दुबे से। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के अभी तक आए नतीजों के मुताबिक दोनों ही राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन 162 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन 99 सीटों पर आगे है, जबकि हरियाणा में बीजेपी 40 और कांग्रेस 30 सीटों पर आगे है। 10 सीटों के साथ जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद के खिलाफ बुधवार को शुरू हुए प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 16 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जवार मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बल और प्रधानमंत्री उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। समर्थक उनके घरों पर डेरा डाले हुए हैं और प्रधानमंत्री को मिले नोबेल पुरस्कार को वापस करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटेन की पुलिस का मानना है कि बुधवार को एक ट्रक में मिले 39 शव चीनी नागरिकों के हैं। पुलिस के अनुसार इसमें 8 महिलाएं हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये रेफ्रिजरेटर ट्रॉली कहां से आया और कहां से इस पर लोग चढ़े। ये ट्रक बेल्जियम से लंदन जा रहा था। बेल्जियम ने इस मामले की शुरुआत शुरू कर दी है।
De container is op 22 oktober om 14:49 toegekomen.
ये ट्रेलर 22 अक्टूबर को दोपहर बाद जिब्रुगी में पहुंचा, उसी दिन शाम ब्रिटेन के लिए रवाना हो गया। 23 अक्टूबर को ये ब्रिटेन पहुंचा। संघीय अभियोजन कार्यालय की जांच जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करने पर केंद्रित है। ये थे बेल्जियम के अभियोजक एरिक वॉन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के शुरू होने के एक सप्ताह बाद लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने पहली बार लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सार्वजनिक फंड का गबन किया है उनकी जवाबदेही तय होगी। उनका भाषण सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। उन्होंने कहा, आज जब हम बात कर रहे हैं, सरकारी लेखा परीक्षक अरबों के फंड की जांच कर रहे हैं। सार्वजनिक धन का जिन लोगों ने गबन किया है उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। भ्रष्टाचार कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। आइए सभी मामलों में पारदर्शिता लाएं। आइए भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करें और मामलों को न्यायपालिका पर छोड़ दें। ये थे लेबनान के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में स्थित सिख धर्मस्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले सिख भारतीय तीर्थयात्रियों को अब वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है और ये भारत की सीमा से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इसके लिए दोनों देशों के सहयोग से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है। कॉरिडोर का उद्घाटन गुरु नानक के 550वें जन्मदिन यानी 10 नवम्बर को किया जाएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन ऑपरेटरों को सरकार को फीस और ब्याज के रूप में 13 अरब डॉलर यानी 91,000 करोड़ रुपए देने की राशि का आदेश दिया है। पहले से ही संकट में जूझ रहे दूरसंचार उद्योग के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। फैसले के बाद वोडाफोन और एयरटेल के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी PMLN ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत बिगड़ती जा रही है और दुर्भावना से उनके इलाज में देरी की जा रही है। प्लेटलेट्स की कमी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवाज शरीफ को पिछले साल भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की सज़ा दी गई और वो अभी जेल में सज़ा काट रहे हैं। उत्तरी सीरिया में कुर्द फौजों ने तुर्की और उनके सहयोगी स्थानीय लड़ाकों पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कुर्दों की अगुवाई वाले SDF के मुखिया अलज़लूम आब्दी ने कहा है कि तुर्की के सहयोग से लड़ाके सीमा के साथ रहे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
ये ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। संदीप सोनी के साथ।
हमारी ये दिवाली डबल दिवाली हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश है।
फिर से एक बार आपने देखा महाराष्ट्र में महायुति को जो है लोगों ने पसंद किया है कि महायुति जो है वो आगे बढ़ रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से अगले 5 साल भी महाराष्ट्र में महायुति का सरकार होगा।
ये जो जनादेश है भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार को सत्ता से बाहर करने का जनादेश है स्पष्ट रूप से।
महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे रुझानों की शक्ल में काफी हद तक सामने आ चुके हैं। जो तस्वीर बन रही है वो इस तरह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के मुकाबले ज्यादा सीटें हासिल कर रही है, लेकिन पिछली विधानसभा के मुकाबले इस बार उसकी सीटें कम हो गई हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जहां BJP और शिवसेना का गठबंधन सरकार बनाने के करीब है। राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन पिछड़ गया है, सरकार बनाने से चूक गया है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में सत्तारूढ़ BJP को झटका लगा है। झटका इसलिए क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार उसकी सीटें कम हो गई हैं। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जहां कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। पहली बार चुनाव में उतरी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। हरियाणा के नतीजों पर चर्चा के लिए चंडीगढ़ से BBC संवाददाता अरविंद छावड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुंबई से BBC संवाददाता सलमान रावी भी हमसे जुड़ेंगे और यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं BBC मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित। आशीष, आपसे ही शुरू करते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कह रहे हैं इस समय ताज़ा आंकड़े?
BJP और शिवसेना को 161 सीटें हैं, मतलब 145 जो है 145 ये मेजॉरिटी मार्क है, उससे वो आगे हैं। लेकिन पिछली बार की तुलना में उनके आंकड़े कम हुए हैं, जो मतलब BJP को झटका माना जा रहा है। कांग्रेस और NCP अभी 100 जगह पे आगे हैं या जीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और NCP की जगह मतलब जो सीट्स हैं वो बढ़ी हैं। तो BJP और शिवसेना सत्ता में तो बने रहेंगे, लेकिन उनकी सीटें कम हुई हैं।
आशीष दीक्षित, आप बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं सीधे मुंबई BBC संवाददाता सलमान रावी के पास। सलमान, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो भी रुझान की शक्ल में आए हैं, मुंबई में इस समय कैसा माहौल है?
देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक दिन पीछे से ले चलता हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले BJP के ऑफिस में पहुंचा, वहाँ लड्डू का इंतजाम था लेकिन वो लड्डू खाने को मिले नहीं, वहाँ ढोल नगाड़ों का इंतजाम था लेकिन वो बजे नहीं, क्योंकि एक अजीब तरह का माहौल था ऑफिस का। जो वरिष्ठ नेता थे BJP के, वो बात करने से कतरा रहे थे, वो नजर भी नहीं आ रहे थे। तो जैसे जैसे रुझान आ रहे थे टेलीविजन चैनल्स पर, वैसे वैसे वहां पर एक सन्नाटा, एक अजब सी खामोशी तारी हो गई थी, क्योंकि दावे थे कि 227 सीट 224 सीट जीत कर आएंगे, लेकिन ये अचानक क्या हो गया? और लेकिन जब नतीजे भी आए तो वो नतीजे बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे दोनों के लिए, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद होगा कि शिवसेना ने अलग होकर चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ा था, और तब जाकर उनकी उतनी ज्यादा सीटें आई थी, और जब दोनों ने मिलकर लड़ा तो सीटें कम हो गईं। और जिन पर मतलब ये कहा जा रहा था कि उम्मीद नहीं थी, जैसे शरद पवार उस उम्र में, वो ऊपर चले गए।
सलमान उस पहलू पे आएंगे। सलमान, जिस तरह के नतीजे रुझानों की शक्ल में अभी तक आ रहे हैं, शिवसेना और BJP ने अब तक अपने CM पद के उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, दोनों ही दबी जुबान में अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहाँ महाराष्ट्र में मुंबई में इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं आपको?
देखिए, चर्चाओं की बात है तो भाई बड़ी मजेदार चर्चा से मैं शुरू करता हूँ कि किसी ने मुझसे कहा कि जितने बोरिंग थे महाराष्ट्र के चुनाव, उतना ही इंटरेस्टिंग उसका जो है उसके नतीजे आ गए। और उसमें क्या हुआ कि मामला जाके फंस गया, क्योंकि मामला हो गया 50-50 का। अब जैसे ही चुनावी परिणाम आए, बजाय इसके कि सरकार बनाने की कवायद शुरू की जाती, वहां एक अचानक से उद्धव ठाकरे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो याद दिलाते हैं कि 50-50 फॉर्मूला हमने कहा था कि शेयर करेंगे पावर, मतलब जिम्मेदारी को शेयर करेंगे, 50% आप 50, यानी कि कार्यकाल का आधा हिस्सा शिवसेना चाहती है कि वो रखे और कार्यकाल का आधा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। यहाँ पर वो फंस गया मामला जाकर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने संवाददाताओं के क्वेश्चंस को डॉज करने की कोशिश की, क्योंकि पहले से तय था शिवसेना ने कहा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे कि हाँ पहले से था तो सही, उसी पे हम काम करेंगे, लेकिन पहले से क्या था वो हम नहीं बताएंगे। अब वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि अमित शाह आएंगे वो बात करेंगे, तो ये बहुत ही खिचड़ी टाइप की पक रही है कि एक ऐसी मेजोरिटी में जिसको जनादेश मिला है, जो सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना चाहिए जिसे, वो आपस में ही एक दूसरे की खींचातानी में लग गए हैं। शिवसेना में नारे लग रहे थे कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इस तरह के स्वर उभरने लगे हैं जो बगावत की बू जिसमें से आ रही है।
शुक्रिया सलमान, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में आशीष दीक्षित भी मौजूद हैं। आशीष दीक्षित, देवेंद्र फडणवीस का होम ग्राउंड विदर्भ माना जाता है और विदर्भ में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार पिछली बार के मुकाबले काफी गड़बड़ा सा गया है।
सिर्फ विदर्भ ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स सभी जगह पे बीजेपी को आ रही हैं। बीजेपी के और शिवसेना के दोनों मिलाकर 7 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, बीजेपी के खुद के 6 मंत्री चुनाव हारे हैं, और जो 35 लोग कांग्रेस और एनसीपी से बीजेपी में आए थे, उन 35 लोगों में से, उनमें से बहुत सारे सिटिंग एमएलए थे, उनमें से 19 लोग हार गए हैं।
कोई बड़ा नाम जिसपे?
बिल्कुल बड़ा नाम है उदयन राजे भोसले, जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, जो एनसीपी में थे, लोकसभा का उपचुनाव था और वो बीजेपी में आ गए। ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल केक वॉक होगा, बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गए। या फिर पंकजा मुंडे हैं जो बीजेपी की एक बड़ी मिनिस्टर हैं,
गोपीनाथ मुंडे की पुत्री,
उनकी पुत्री, वो भी हार गई है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग भाजपा के हारे हैं। और अभी जो उद्धव ठाकरे की आपने बात की, उद्धव ठाकरे इज इन फॉर अ हार्ड बार्गेन। मुझे नहीं लगता है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर की पोस्ट की बात करके वो बड़े बड़े जो प्लम पोर्टफोलियोज हैं वो शिवसेना के लिए पाना चाहते हैं।
बहुत शुक्रिया आशीष दीक्षित। अब बात हरियाणा की, चंडीगढ़ से बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अरविंद, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल संदीप।
अरविंद, सबसे पहले तो ये बताइए कि हरियाणा में अभी तक के रुझान और नतीजे क्या कह रहे हैं?
जी देखिए, ये ऐसा माना जा रहा था कि एक तरफा मैच होने वाला है जिसे बीजेपी बड़ी आसानी से जीत जाएगी, एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे अधिकतर, लेकिन जो बात बीजेपी कर रही थी की बार 75, तो 40 को 40 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाई है। इस समय जो लीडिंग और जीत जो है उनकी मिलाकर वो 40 है भाजपा की, कांग्रेस की 31, जेजेपी की 10 और जो निर्दलीय है वो 7।
अरविंद, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको भी और श्रोताओं को एक आवाज सुनवाना चाहते हैं, उसके बाद आपसे बात दोबारा करेंगे।
ये जो जनादेश है भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार को सत्ता से बाहर करने का जनादेश है, स्पष्ट रूप से जो सरकार 3 महीने पहले 80 सीटों पर जीती हो लोकसभा चुनाव में, और लगातार हर चैनल 80 से ज़्यादा सीटों को दे रहा हो, वो आज 35 और 40 के बीच में घूम रही है, इर्द गिर्द रह गई हो उनकी संख्या सिकुड़ के, स्पष्ट रूप से जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए ये जनादेश दिया है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो बाकी दल हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हैं, चाहे अभय जी हैं, चाहे इंडिपेंडेंट्स हैं, उन सभी को जो मत पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास का मत पड़ा है। समय है कि सब साथ आएं, मिलके गठबंधन की विपक्ष की एक स्थायी सरकार हरियाणा में देने का काम करें।
ये थे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। अरविंद, सुना आपने दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, आप बताइए हरियाणा में सरकार बनाने के लिए गठबंधन कैसे बनेगा, कौन किससे किस तरह हाथ मिला सकता है?
जी देखिए, बात बिल्कुल एकदम साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 40 सीटें हैं, उन्हें चाहिए 46, तो उसके पास बचते हैं 2 ऑप्शन। एक तो जो जेजेपी है उनके पास 10 सीटें हैं, तो अगर जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाती है तो वो 50 सीटें हो जाती हैं, और जो इंडिपेंडेंट और जो बाकी अन्य हैं वो 9 सीटें हैं। तो कोई ज्यादा मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, ये उनका दावा है, और उन्होंने इस समय स्टेक भी कर दिया है अपना जो क्लेम है वो गवर्नर के पास, तो ये हमें जो सूत्रों से पता चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई खास उनके सामने मुश्किल आने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ ये कोशिश कर रही है कि बाकी जो पार्टी, जैसे आपने दीपेंद्र हुड्डा को भी सुना कहते हुए कि ये जो जनादेश है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो बाकी जितनी भी सारी पार्टियां हैं, जेजेपी और जो बाकी निर्दलीय पार्टियां हैं और अन्य पार्टियां हैं, उनको एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने की कोशिश करनी चाहिए, और जो बाकी पार्टियां हैं कांग्रेस के साथ वो भी मिलकर इस वक्त बनाने की स्थिति में तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है उनको कहना है कि हमें क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं इसलिए हमारा सबसे पहले दावा बनता है, और वो इस समय जो जोर तोड़ की स्थिति है वो यहाँ पर जारी है।
बहुत शुक्रिया चंडीगढ़ से बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा। महाराष्ट्र और हरियाणा के सियासी समीकरणों पर मैंने आपसे कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि हरियाणा में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी लोकसभा चुनाव वाले नतीजे 6 महीने के अंतर पर ही नहीं दोहरा पाई।
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इनके लिए, बीजेपी के लिए। इन्होंने हरियाणा में 3-4 चीजों को लेकर वो पूरा इनका भरोसा था कि पिछले परिणाम से ज्यादा ही होगा, लेकिन ऐसी नहीं हुआ। पहला कारण जो मुझे लग रहा है, एक इन्होंने एक समीकरण किया था जाट और नॉन जाट, तो इसमें कट्टर को एक नॉन जाट के नेता के रूप में करके फिर उन्होंने ये किया, फिर बाद में जाटों को फिर यंग जाट नेताओं को फिर बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की ताकि उस समीकरण को किसी तरह बीजेपी के फेवर लाने में, मुझे लगता है वो समीकरण फेल हुआ है। जिस तरह सारे जो जाटों को जो वोट है वो, या भूपेंद्र सिंह हुड़ा के नेतृत्व में जो कांग्रेस की जो इस बार रही है चुनौती उसको उनके लिए गया, और दूसरा ये जो दुष्यंत चौटाला जिनकी जो नई पार्टी है जेपी भी उनको गया है। तो एक तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक समीकरण में काफी चेंजेस आए हैं जो बीजेपी के फेवर में नहीं गए। दूसरा मुझे बहुत ज्यादा लगता है कट्टर सरकार ने काफी काम किए, वो सब है, लेकिन तीसरा जो बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि जो ग्रामीण लेवल पे यानी रूरल हरियाणा में जो प्रॉब्लम है, किसानों की जो समस्या है वो एक तरफ, दूसरी तरफ हरियाणा के जितने इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं आपको गुड़गांव से लेकर मानेश्वर, वहां पे जो आर्थिक अवस्था के जो स्थिति पैदा हुई है जिसपे से आप स्लो डाउन कहिए जो भी कहिए, कई नौकरियां गई है, मुझे लगता है ये आर्थिक स्थिति का भी बड़ा असर पड़ा है जिसको बीजेपी इनकार कर नहीं सकती। आखिरी में देखिए ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी को इन्होंने टोटल रिजेक्ट करके अपोजिशन को अपना लिया, ऐसा भी नहीं हुआ है, लेकिन एक मैसेज जरूर गया है उनके वजह से जो बीजेपी के नुकसान हुआ वो भी हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा है 3-4 फैक्टर्स के वजह से मुझे लगता है बीजेपी की जो अपेक्षाएं थी कि हरियाणा में, वो अपेक्षाएं बिल्कुल टूट गई है।
शेखर अय्यर, चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कोई पॉलिटिकल पार्टी जमीन पे कितनी मजबूत या कितनी ही कमजोर क्यों ना हो वो कभी अपनी कमजोरी मानती नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी अंदर ही अंदर की जमीन उसके पैर के नीचे से हरियाणा में धीरे धीरे खिसकी है, या उसे अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह के नतीजे भी आ सकते हैं?
मेरा अनुमान है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना मतलब नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसका ज्यादातर कारण था विपक्ष की जो हालत, क्योंकि विपक्ष कोई बड़ा ऑर्गेनाइज नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 2 महीने से पहले तय भी नहीं किया था उन किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। सोनिया गांधी टेकओवर होने के बाद आपने देखा है उन्होंने अशोक तंवर जो राहुल गांधी की अपॉइंटी है उनको हटा के हुड़ा के हाथ में सौंप दिए, यानी कांग्रेस का भी बड़ा फैसला रहा सोनिया गांधी के खास करके कि कांग्रेस का नेतृत्व भी हुड़ा करेंगे, जिस हुड़ा पिछले चुनाव बहुत बुरी तरह से हारे थे। और इस बार हुड़ा के पूरा सामने के बाद हमने देखा है कि अशोक तंवर जो एक दलित नेता है उनके नेतृत्व में बड़ा विरोध हुआ है, उसके बावजूद हुड़ा ने अपना बेस संभाल के और थोड़ा सीट्स भी बढ़ा लिया है। कांग्रेस अपनी तरफ से इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी, और मैं तो मानता हूं कि ये जो परिणाम है ये कांग्रेस के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपने देखा होगा सोनिया गांधी ने एक ही रैली जो एड्रेस करने वाली थी उसको भी कैंसिल किया था और राहुल को भेजा था, राहुल ने भी एक आध मीटिंग किए थे, कोई बड़ा कैंपेन कांग्रेस से बड़े नेतृत्व से नहीं हुआ। इसका मतलब कांग्रेस का इतना ही था भाई किसी तरह अपना जो भी 6-10-15, क्योंकि हुड़ा जी ने भी 10-15 की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर मतलब पब्लिक के अंदर जो एक मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से जो नाराजगी कहिए या एक हेल्पलेसनेस कि जिस तरह आर्थिक अवस्था है वो इसके रिफ्लेक्ट हुआ है।
शेखर अय्यर, महाराष्ट्र के बारे में क्या कहेंगे जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस लगभग खत्म हो गई थी एक तरह से, उसने काफी रिवाइव किया है उस हिसाब से, भले ही हार गई है विधानसभा चुनाव लेकिन सीटें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हासिल की हैं, क्या ये महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के नए सिरे से उदय की शुरुआत कही जा सकती है?
ये ज्यादा एनसीपी की क्रेडिट पे जाता है, कांग्रेस का कम, क्योंकि कांग्रेस जितना शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी कर पाया उतना कांग्रेस उनको साथ नहीं दिया। अगर कांग्रेस की तरफ भी और जोश होती और कांग्रेस भी अपनी थोड़ा हाउस को ऑर्डर में रख के थोड़ा एक मजबूत से और एक यूनाइटेड रूप में अगर चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है ये परिणाम और भी चेंजेस होते। ये सारा क्रेडिट जो विपक्ष का जो प्रदर्शन रहा ये सारा क्रेडिट शरद पवार को जाता है, जिनकी आपने देखा होगा उनकी छवि भी छपी थी अखबारों में, बारिश में भी वो कैंपेन कर रहे थे, इस उम्र में भी वो एक मैसेज दे रहे थे कि अभी भी हम मैं जवान हूँ। दूसरी तरफ शिवसेना का प्रदर्शन बीजेपी से काफी अच्छा हुआ, यानी स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है बीजेपी के स्ट्राइक रेट से, तो एक वर्किंग मेजोरिटी मिली है। लेकिन शिवसेना का प्रदर्शन की वजह से मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में शिवसेना का दबदबा बढ़ेगा बीजेपी पे।
शेखर अय्यर, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब बारी है दिल्ली और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की, क्या लगता है आपको महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे दिल्ली और झारखंड के नतीजों पर, चुनाव पर कितना असर डाल पाएंगे?
देखिए दोनों राज्यों में इसका असर होगा क्योंकि हरियाणा दिल्ली की बहुत नजदीक है, इसीलिए दिल्ली में काफी होगा, खास करके उन क्षेत्रों में पश्चिम दिल्ली में इसका असर ज्यादा होगा। और दूसरी बात है कि झारखंड में इतना असर मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वहां भी विपक्ष की तरफ से कुछ अच्छा अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि कांग्रेस केंद्र नेतृत्व तय करे कि भाई अभी लग के काम करना है झारखंड में, तो अपने आप में एक उत्साह दे सकता है। और दिल्ली का आप अगर देखेंगे, दिल्ली मुझे मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद ही अपने स्ट्रेटजी काफी उन्होंने चेंज की है। हो सकता है कि दिल्ली की लड़ाई जो है वो कांटे की टक्कर हो सकता है बीजेपी और आपके बीच में।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अपनी पिछली सीटों को बचाने में तो लगभग कामयाब रही, लेकिन बिखरे विपक्ष और विपक्षी नेताओं की कथित निष्क्रियता के चलते उसे जिस परिणाम की उम्मीद थी वो परिणाम उसे हासिल नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट में।
11 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की बात करें तो ऐसा लगता है कि यहां बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस की चौतरफा लड़ाई थी। 11 में से 8 सीटें बीजेपी विधायकों के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थीं, लेकिन बीजेपी उनमें से सिर्फ 7 ही बचा पाई। एक सीट उसकी सहयोगी अपना दल को गई है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत चुकी है और अकबरपुर जिले की जलालपुर सीट पर उसकी बहुजन समाज पार्टी से कांटे की टक्कर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में कोई सीट नहीं हासिल की, हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इनमें से कोई सीट उसके पास नहीं थी। लेकिन सहारनपुर के गंगोह में जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार सुबह से आगे चल रहा था तो उसे उम्मीद थी कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी, लेकिन आखिरकार बीजेपी उम्मीदवार कीरत सिंह ने करीब 5400 मतों से कांग्रेस उम्मीदवार नोमान मसूद को मात दे दी। नोमान मसूद के समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। और मसूद ने आरोप लगाया कि वो चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि हराए गए हैं।
3.5 राउंड जब रह गए, प्रशासन ने हमें सबको बाहर कर दिया, इलेक्शन एजेंट्स बाहर, हम बाहर, सारे कैंडिडेट्स बाहर, एजेंटों को भी हटा करके मशीनें आई हैं, हमें कहा बाहर गए। मशीनें की जो सीलें थी वो खिली हुई हैं लास्ट के राउंड में, और मुझे कांग्रेस को एक एक वोट भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे वोट मिलता हुआ अचानक ब्रेक हो जाएगा।
हालांकि सहारनपुर के जिलाधिकारी आलोक पांडे ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया।
किसी भी प्रकार का कोई भी मैल प्रैक्टिस इलेक्शन में ना तो अलाउड है, ना कोई कर सकता है, ना आरओ कर सकता है, ना कोई मशीनरी कर सकती है। कंप्लीट काउंटिंग प्रोसेस जनरल ऑब्जर्वर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है, पूरा CCTV कवरेज है, पूरा वीडियो कवरेज है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने परिणामों पर संतोष जताया है। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि उम्मीद और अच्छे परिणाम की थी, लेकिन फिलहाल इतना ही काफी है।
एक सामान्य सा ट्रेंड रहता है कि उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज हमेशा डाउन होता है, और जब जब वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है तो बीजेपी के लिए अलार्मिंग होता है, बीजेपी के लिए नुकसानदायक होता है। हमें अपेक्षा और अच्छे परिणाम की थी, हम और सीटों को जीत सकते थे। हमारी अपेक्षा थी कि हम जयपुर की सीट जो हार गए वो सीट हमारी सीट थी जहां हमारा नुकसान हुआ है, जलालपुर की सीट हमारे लिए जीतने की एक चुनौती थी, और रामपुर में जिस तरह का हमने परफॉर्मेंस की है रामपुर की सीट भी, हालांकि वो समीकरणों के आधार पर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का हमने काम किया है उसके काम के आधार पर हमारे लिए अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो सीट हम नहीं जीत सके।
उपचुनाव में बीजेपी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी ने प्रचार कार्यों में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। कांग्रेस और BSP का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ रामपुर में प्रचार करने गए। हालांकि रामपुर में आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा चुनाव जीत गईं और ये बता गईं कि बीजेपी को यहां जीत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि चुनाव प्रचार में बीजेपी को ज्यादा नुकसान भले न हुआ हो, लेकिन ये परिणाम उसके लिए चेतावनी जरूर दे गए हैं।
उपचुनाव जिसे कि आम तौर पर माना जाता है कि ये सरकार का चुनाव होता है और जिसकी सरकार होती है उसका पलड़ा भारी होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि फटा बिखरा विपक्ष था, उत्साहहीनता दिख रही थी, विपक्ष ने अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं की, कैंडिडेट सिलेक्शन में विपक्ष ने कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं की, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबाने पड़े हैं तो ये संकेत तो कम से कम इतने मिल रहे हैं कि आने वाला विधानसभा का जो आम चुनाव होगा आपसे तकरीबन 2 सालों के बाद कोई आसान लड़ाई नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए।
बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार उपचुनाव में हिस्सा लिया था लेकिन उसका कोई लाभ उसे नहीं मिला, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए उपचुनाव निश्चित तौर पर उत्साह बढ़ाने वाले निकले। पार्टी ने कोई सीट भले ही न जीती हो लेकिन वो 2 जगहों पर दूसरे नंबर पर रही और पिछले चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत में उसने दूने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हासिल की। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उधर बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड 4 में से केवल 1 सीट बचा पाई है और किशनगंज विधानसभा से ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज करके बिहार में अपनी दस्तक दे दी है। इसी तरह समस्तीपुर लोकसभा सीट पर NDA के घटक लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। विस्तार से जानकारी नमस्कार भारत में। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे को लेकर आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब के दर्शन करने जा सकेंगे। अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर पर आज हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत से श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन अब बिना वीजा लिए कर पाएंगे। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने अपने अंतिम लगभग 18 वर्ष यहाँ पर बिताए थे। यह गुरुद्वारा गुरुद्वारा दरबार साहब के नाम पे नारोवाल में स्थित है। भारत और पाकिस्तान ने गुरु नानक देव के 550वें जन्म शताब्दी के उपलक्ष में इस कॉरिडोर को खोलने का फैसला लिया था। भारत की तरफ से गृह मंत्रालय के अधिकारी SCL दास और पाकिस्तान की ओर से उनके विदेश मंत्रालय के अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर एक सादा समारोह में डेरा बाबा नानक के ग्राउंड 0 पॉइंट पे किए गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ पत्रकार वार्ता की जिसमें CL दास ने बताया,
ब्रीफली वी हैव एग्रीड अंडर द एग्रीमेंट टुडे दैट इंडियन पिलग्रिम्स,
धार्मिक आस्था रखने वाले सभी भारतीय श्रद्धालु और भारतीय मूल के लोग इस कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक वीजा फ्री यात्रा होगी जिसमें श्रद्धालु को एक वैलिड भारतीय पासपोर्ट साथ में ले जाना होगा। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन की जरूरत होगी जिसका बाद में बताया जाएगा, और भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रहते हैं और OCI कार्ड जिनके पास है वो इस कॉरिडोर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने देश का पासपोर्ट साथ में लेके आना पड़ेगा। यह कॉरिडोर सुबह से लेके शाम तक यात्रियों के लिए खुला रहेगा और जो भी यात्री सुबह इसमें जाएगा शाम को उसे रात को वापस आना पड़ेगा।
यह पूछे जाने पर कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारा परिसर में एंटी इंडिया एलिमेंट्स को रोकने का क्या आश्वासन दिया है पर जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी दीपक मित्तल का कहना था,
हमारे इस विषय में पाकिस्तान पूरी तरह से अवगत है। हमने पाकिस्तान से इस बारे में बात की है और पाकिस्तान ने हमें आश्वस्त किया है कि वो कॉरिडोर को किसी भी तरीके से मिसयूज नहीं होने देगा। यह एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है जिसे हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं।
दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा लगाए गए $20 सर्विस फीस को जायज बताते हुए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर फैसल कहते हैं,
$20 सर्विस चार्जेस जनाब बिल्कुल चार्ज किए जाएंगे जी, ये 1/3 से भी कम है जो खर्चा आपके सामने है, आप देख लेंगे ह्यूज है और इसको हम बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक नॉमिनल सा $20 सर्विस चार्ज है जी, कोई फी इसमें नहीं है।
पुलवामा हमले और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान लगभग सभी संबंध विच्छेद हो चुके हैं। यह पहला मौका था जब दोनों देशों के अधिकारियों ने ना सिर्फ आपस में हाथ मिलाए बल्कि करतारपुर कॉरिडोर के एग्रीमेंट पर राजी हुए और नवंबर 9 को इस कॉरिडोर को खोलने का आश्वासन दिया। BBC हिंदी के लिए पंजाब से रविंदर सिंह रॉबिन।
और चलते चलते आपको अपडेट देते चलें, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना 162 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस एनसीपी 100 सीटों पर। इसी तरह हरियाणा में बीजेपी 40, कांग्रेस 30 और जेजेपी पार्टी ने 10 सीटों पर बढ़त बना रखी है। दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभरात्रि।